ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि में आने का जो सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है, उसमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप सभी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जून के महीने में बट्टी करना है ना सौभाग्य, और प्यारी माँ के दिन यहाँ पर भोग का अनुभव करना, मम्मा के साथ के अनुभव करना, तो कितना बड़ा सौभाग्य। कभी कभी किसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, तो कासगंज वाले या अन्य स्थानों से जो भी भाई बहने आए हैं, तो उनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि नहीं। तो अपने सौभाग्य के लिए बाबा को, मम्मा को और सभी दादियों को थैंक्स दो। करतल ध्वनि से बाबा को अपने मन की खुशी के उद्गार बाबा को सुनाओ। तो बाबा तो हमेशा अपने लाडले बच्चों को देख करके बहुत ही खुश होते हैं। बाबा के साथ साथ हमारी प्यारी प्यारी मम्मा और दादियाँ भी सब बच्चों को देख करके बहुत खुश होती थी। तो मम्मा भी कितना ना खुश हो रही होंगी आप सबको देख करके, क्योंकि आप सभी एक ऐसे स्थान से आए हैं जहाँ पर बाबा के विशेष रत्न निकले हैं। कासगंज में जो वर्तमान सेवा पर उपस्थित हैं हमारी सरोज बहन, साकार बाबा की पालना लिए हुए, साकार बाबा के साथ रहते हुए, और पूरा ही परिवार बाबा का है। सरोज बहन, राजू भाई, उनके लौकिक पिता और उनके चाचा और सारा पूरा का पूरा परिवार जो है बाबा का है। और ये तो एक गांव में रहते थे, लेकिन ऐसे गांव से बाबा ने ऐसे ऐसे रत्नों को चुना। तो आप सभी का भी कितना बड़ा भाग्य है कि सरोज बहन, जिसने बाबा, मम्मा और दादियों की विशेष पालना ली है, और उस पालना के द्वारा आप सबकी भी बहुत बहुत पालना करती है। अब मम्मा का दिन जो सरोज बहन के साथ और भी सेवा साथी हैं, कौन कौन आए हाथ खड़ा करो, सेंटर से जो आए ना, बहुत से साथी हैं। सेंटर की सारी बहनें भी बहुत प्यार से सेवा करती हैं, और कासगंज की तो कितनी विशेषताएं हैं। तो हम कह रहे थे ये भी एक भाग्य है, बाबा ने हम बच्चों का कहां से चुन करके कहां से कहां पहुंचाया और कितना भरपूर किया। और कल हम सभी प्यारी मम्मा के साथ के अनुभव कर रहे थे, और मम्मा के साथ के तो अनुभव हर एक के बहुत न्यारे और प्यारे हैं। आप सभी तो मम्मा को दूर से देखते हैं, सरोज बहन ने तो नज़दीक से देखा, लेकिन आप सभी दूर से देखते हैं। तो हमने भी साकार में मम्मा को देखा है। तो हम छोटे ही थे, मम्मा उस समय दिल्ली में आई थी। मम्मा बीच बीच में चक्कर लगाती थी। मम्मा एक बार लखनऊ में गई थी, यूपी में भी गई थी, और मम्मा पंजाब में भी गई थी। तो मम्मा जो है यहाँ दिल्ली से पंजाब, उस समय पंजाब था, अभी पंजाब और हरियाणा है। तो मम्मा आई थी करनाल, जो कि दिल्ली से लगभग उस समय बाय बस 3 घंटा, बाय कार 2-2.5 घंटा लगता है। तो मम्मा वहाँ आई थी, तो उस समय मनोहर दादी वहाँ थी। और पहले पहले करनाल के अंदर सेंटर जो था काफ़ी बड़ा था, 2-3 कमरे, आगे आंगन, बाहर आंगन, और बाहर ओपन में भी बहुत ज़्यादा जगह थी। तो जब जब प्रोग्राम होते थे वहाँ टेंट लगा करके वहाँ पर प्रोग्राम्स करते थे। तो जब मम्मा आई तो हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, और छोटे बच्चों को हमेशा लाइन में खड़ा कर देते हैं स्वागत करने के लिए। तो हमको भी मौका मिला कि लाइन में खड़े हो गए, फूल पुष्प लेकर के खड़े हो गए। और मम्मा 4-5 दिन करनाल में रही थी, तो जब मम्मा वहाँ रही तो हम बच्चे भी वहाँ पर आसपास घूमते रहते थे। तो मम्मा को विशेष कमरा था, तो उस कमरे में मम्मा रहती थी। तो हम बच्चे क्या करते थे, सब बैठे आराम से बैठो, हिलो नहीं कोई भी, इधर उधर नहीं देखो। अच्छा, तो मम्मा सब बैठती थी, बहुत तपस्विनी। तो हम बच्चे थे तो बाहर उधर बरांडा था, तो बरांडे से क्या करते थे, खिड़की से मम्मा को देखते थे, मम्मा को खिड़की से देखते थे। और मम्मा तो बहुत तपस्या में बैठी होती थी, तो मम्मा ने भी एक बार खिड़की से मेरे को देख लिया। मम्मा ने कहा आओ आओ अंदर आओ। अब हम जब अंदर जाएं तो डर लगता था, मम्मा कहेगी तुम खिड़की से क्यों देख रहे थे। तो हम अंदर खिड़की से देखा था, तो मम्मा ने बुलाया और मम्मा ने इतना प्यार किया, सिर पे हाथ रखा, और जैसे कि माँ अपने बच्चों की पालना करती है तो ऐसे ही मम्मा का स्वरूप था। फिर उसके बाद मम्मा ने कहा बच्चे तुमको तो बहुत सेवा करनी है, अब छोटे बच्चे हैं सेवा क्या करनी है, वो तो कुछ पता ही नहीं था। तो हम देखते थे कि मम्मा किसी को भी देख ले उसकी जन्म पत्री को पहले से ही जान लेती थी, और जन्म पत्री के साथ साथ मम्मा वैसा ही वरदान बच्चों को दे देती थी। फिर मम्मा की तो इतनी विशेषताएं हैं। मम्मा एक बार दिल्ली में थी तो वहाँ पर एक युगल ज्ञान में, युगल नहीं, एक बहन ज्ञान में थी। उसका पति जो है वो ज्ञान में नहीं था, काफी बंधन डालता था। तो मम्मा जब दिल्ली में गई ना, तो उसका पति बहन को कहता था कुछ भी हो जाए मेरे को मम्मा से मिलना है। वो बहन कहती थी कुछ भी हो जाए इसको मेरे को मम्मा से नहीं मिलाना। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहस करता था, बहुत ऐसे कुछ ना कुछ डिबेट करता था, तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि ये मम्मा से मिले। तो क्या हुआ कि मम्मा ऊपर छत पर कमरे में बैठी थी, तो वो बहन कहीं इधर उधर थी, तो उसका पति वहाँ पर गया और वहाँ जो पहरे पर बहन थी उसको बोला कि मैं मम्मा से मिलने आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ। तो मम्मा को संदेश दिया गया, मम्मा ने कहा हाँ जरूर आए। तो जैसे वो ऊपर गया और मम्मा को देखा, और देखते ही उसको देवी का साक्षात्कार हुआ, एकदम जैसे शश्वत प्रणाम करते नीचे झुक के माँ माँ कह के पुकारने लगा। तो फिर मम्मा को कहता है मम्मा मेरे को आपसे एक कंप्लेन है। मम्मा ने कहा क्या कंप्लेन है, आप इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी वरदानी और देवी माँ, आपके दर्शन के लिए क्यों मना करते हैं हमको। मम्मा ने कहा नहीं आप तो हो ही, तब से लेकर के जितने दिन मम्मा वहाँ दिल्ली में रही तब से लेकर के वो मम्मा के आसपास रहा, और जो भी प्रोग्राम करना था, जो कुछ करना था, वो सब के सब मम्मा के लिए, यहाँ जाना है वहाँ ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ कहा। तो अपनी युगल को बोलता है तुमने इतनी बड़ी भूल किया, इतनी ऊंच अथॉरिटी, इतनी बड़ी अथॉरिटी है और उससे मिलने के लिए तुम मेरे को ना क्यों करती थी। उसने कहा मैंने सोचा है कि तुम रोज मेरे से बहस करता है, इतनी बड़ी अथॉरिटी से बहस करेगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसने कहा ये अथॉरिटी को देख करके कोई बहस नहीं कर सकता। तो एक बार की बात है, यूपी साइड में कहाँ पर मम्मा का प्रोग्राम रखा था, स्टेज हॉल में बड़ा प्रोग्राम रखा था। कुछ लोग शुरू शुरू में तो बहुत एंटी थे, तो कई लोग ऐसे थे हॉल में छुप करके बैठ गए, आज मम्मा आएगी ना हम बहुत हंगामा करेंगे। हॉल में जैसे ही ना सारे बैठे थे, कुछ कुछ हंगामा करने वाले भी बैठे थे, और मम्मा जैसे स्टेज पर आई तो लगे कोई फरिश्ता आ गया, ऐसे लगे कोई देवी आ गई है। तो वो लोग जो हंगामा करने वाले थे वो आगे आकर के एकदम झुक करके मम्मा को नतमस्तक करने लगे, कहने लगे कि देखो हमने सोचा क्या था, सुना क्या था और देखा क्या है। तो उन्होंने फिर इतनी मदद की मम्मा के प्रोग्राम के लिए, कई स्थानों पर उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए। तो मम्मा की तो कितनी विशेषताएं थी, मम्मा जो है बहुत ज्ञान युक्त, योग युक्त और धारणा में बिल्कुल संपूर्ण थी। तो एक और कहानी सुनाती हूँ कि मम्मा का पुरुषार्थ इतना तीव्र था तो सब की सब, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा मम्मा छोटी आयु में आई और मम्मा तो बाबा से भी बहुत छोटी थी और साकार में बाबा भी उनको मम्मा कहते थे, सब दादियाँ जो उनसे बड़ी थी उनको भी मम्मा ही कहते थे। तो एक बार दीदी मनमोहिनी जो है ना, वो भी बहुत ज्ञान के अंदर एक्यूरेट और सब मर्यादाओं के अंदर बहुत एक्यूरेट थी। कुछ भी हो जाए, बाबा ने जो कहा है सभी मर्यादाओं का पूर्ण रीति से पालन करना है। तो बाबा की आज्ञा, बाबा का कहना, दीदी मम्मा और दादियाँ जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट पालन करती थी। तो एक बार दीदी मनमोहिनी का सुना है कि नहीं सुना, कभी सुना कि नहीं, फोटो देखा है दीदी मनमोहिनी का कि नहीं, देखा है कि नहीं, हाँ देखा है ना, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़ा करें, सबने देखा। तो दीदी मनमोहिनी मम्मा के बाद दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि, ये दोनों यज्ञ के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। पहले तो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो मम्मा थी बाबा के साथ, फिर बाद में ये दोनों थे। तो दीदी जो बाबा के टाइम पर बाबा से एक दिन प्रश्न पूछा, बाबा को कहा, बाबा एक प्रश्न है। तो बाबा ने कहा, बोलो क्या प्रश्न है। बोला कि बाबा आप जो डायरेक्शन देते हैं, जैसे डायरेक्शन देते हैं, तो उन सभी डायरेक्शन को या श्रीमत को जैसे मम्मा एक्यूरेट पालन करती हैं, हम भी, मैं भी तो ऐसे एक्यूरेट पालन करती हूँ, लेकिन क्या कारण है कि मम्मा पहला नंबर है और हमको दूसरे उसके बाद का नंबर मिलता है। तो बाबा बहुत मुस्कराए, बाबा ने कहा, बच्ची तुमने बहुत एक्यूरेट प्रश्न पूछा है। बाबा ने कहा कि मम्मा को जो भी बाबा कहते हैं, मम्मा को नहीं, बाबा किसी भी बच्चे को जो भी श्रीमत देते हैं तो मम्मा क्या है उस श्रीमत का खुद पालन करते। वो कभी नहीं सोचती है कि बाबा ने ये बात इसको कही, ये तो इसके लिए, मेरे लिए नहीं है, तुम बच्चे क्या करते हो ये सोचते। देखो बाबा ने ये डायरेक्शन इस बच्चे को दिया, ये सुनता ही नहीं है, धारण भी नहीं करता, पता नहीं बाबा ने इतना बताया, कुछ भी नहीं सुनता है। तो तुम खुद धारण करने की बजाय दूसरे को देखते हो तो इसके कारण नंबर कम आ जाता है। तो ऐसी ऐसी मम्मा की धारणाएं थी। और मम्मा से जब पूछते थे तो मम्मा कहती थी, ना जाने कौन सी लास्ट घड़ी हो। मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, मम्मा ने कहा हर सेकंड ऐसा एक्यूरेट अंतिम पुरुषार्थ हो, पता नहीं किस समय लास्ट घड़ी हो। तो मम्मा खुद हर समय पुरुषार्थ करती थी। फिर मम्मा जो थी वो ऑलराउंडर थे, चारों तरफ से ध्यान देती थी यज्ञ के लिए, बहुत पूरा हर तरह से, इकोनॉमिकली, संकल्पों की इकोनॉमिकली, यज्ञ का सारा कारोबार को भी बहुत अच्छी तरह से देखती थी। तो एक बार की बात है, अब आप समझ सकते हैं, जहाँ पर बाबा होंगे तो सब बच्चे तो बाबा के पास दौड़ेंगे, जैसे अव्यक्त बाप दादा आते थे हॉल में बैठे, सब कहेंगे बाबा को देखें, बाबा को देखें। तो एक बार बाबा ना आंगन में चक्कर लगा रहे थे, तो सब बच्चे भाई बहने दौड़, बच्चे में जो बहनें थी, दादियाँ, भाई, सब दौड़ करके बाबा के साथ चक्कर लगाने लग गए, पर मम्मा नहीं आई। तो बाबा ने कहा, मम्मा कहाँ है। एक बहन कहती, बाबा मम्मा तो पता नहीं कहाँ है, उसको आना चाहिए ना, हम सब यहाँ हैं बाबा के साथ, उसको तो आना चाहिए, क्यों नहीं आती, ऐसा क्यों सोचती है। बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा ने एक बहन को बोला, जाओ देख के आओ मम्मा कहाँ है। तो वो गई तो वो तो मम्मा किचन में चक्कर लगा रहे थे। मम्मा ने क्या किया, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम था, बर्तन बिखरे हुए थे, कोई सफाई करनी थी, चीज़ें ऊपर नीचे थे, बचा हुआ खाना ऐसे खुला पड़ा था। तो मम्मा ने क्या किया, बचा हुआ खाना उसको सारा सेट करके, ढक करके, किचन की सफाई करके, सब चीज़ों को एक्यूरेट करके, किचन में चक्कर लगाते हुए बाबा की याद में थी। तो आकर के बताया, बाबा मम्मा तो किचन में चक्कर लगा ली है और उसने सारा काम कर दिया। बाबा ने कहा, देखो ये यज्ञ रक्षक है और ये एक्यूरेट याद है, ये बाबा से दूर नहीं है, ये बाबा के साथ है। जैसे बाबा मुरली के अंदर कहते हैं ना, कहीं पर भी रहो, किधर भी रहो, लौकिक काम भी करो, लेकिन बाबा को नहीं भूलो। तो ऐसे मम्मा के लिए बाबा ने क्या कहा, मम्मा जो है ये बिल्कुल जो एक्यूरेट कर रही है, ऐसी स्थिति वाली बच्ची सदा बाबा के साथ है। तो मम्मा का महीना चल रहा है तो मम्मा जो है हर समय अपनी चेकिंग करती थी। और आप सभी को भी एक सुंदर मौका मिला है, तो अब हमें कौन सी चेकिंग करनी, हमें भी तो चेकिंग करनी होगी ना। मम्मा के महीने में आए, मम्मा का दिन मनाया, तो हमें कौन सी चेकिंग करनी होगी। मम्मा क्या करती थी, सदा अपने आप को चेक करते। अब चेक करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ भाई, चार्ट लिखेंगे, क्या करेंगे बहने बताओ क्या करेंगे। हाँ देखो, मैं आपको छोटी सी युक्ति बताती। जैसे आप होते हैं ना, हर एक भाई लोग या बहने, सबको एक आदत पड़ी हुई है एक छोटा सा शीशा देखने का। जितनी भी बहने होंगी उनके पर्स में एक छोटा शीशा मिलेगा ना, पर्स में रखती है, शीशा देखते, जिसको बाबा कहते हैं मिरर। मिरर में सब प्रकार से देख सकते हैं ना। अब मिरर भी कई प्रकार के हैं। बहनों के पास जो मिरर होता है वो छोटा सा होता है, अपना देखती रहेंगी। और भाई लोग क्या करते हैं, गाड़ी का जो मिरर होता है ना, स्कूटर का होगा, गाड़ी का होगा, उसके अंदर अपना फेस देखते रहते हैं। और घर में भी मिरर होता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, हर प्रकार के मिरर होते हैं ना। अब बाबा ने भी हमको कहा है कि अपने स्वरूप को हर समय कैसे देखना है। जैसे साकार में बाबा क्या करते थे, लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाते थे और वहाँ पर बैठ करके साकार में बाबा चेक करते थे। एक बार किसी ने कहा बाबा को, बाबा आपका तो पार्ट फिक्स है, आप ये क्यों अपनी चेकिंग करते हैं। बाबा ने कहा, मैं अगर पुरुषार्थ नहीं करूँगा, मेरा पार्ट फिक्स है, वो तो ढीला हो जाएगा। बाबा हर प्रकार से सेवा करते थे और बाबा बैठ करके लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठते थे, चेक करते थे कि जैसे इनके अंदर मानसिक प्योरिटी है, मेरा मन कितना शक्तिशाली बना है, मेरे अंदर कितने डिवाइन क्वालिटीज हैं, मैंने कितने परफेक्शन की स्टेज को पाया है। तो इस प्रकार से हमें कितने प्रकार के मिरर अपने पास रखने हैं। माताओं के लिए जो शीशा रखना है वो एकदम क्लियर, तो माताएं क्या करेंगी, कौन सा शीशा रखेंगी, शिव बाबा मेरे दिल में, है ना, छोटा सा है ना, दिल में रह सकता है ना, शिव बाबा मेरे दिल में, मैं बाबा के दिल में, ठीक है ना। और घर का शीशा होता है ना, कई प्रकार के शीशे होते हैं, वहाँ लखनऊ में जाओ ना और वहाँ पर तो भूल बने कहीं पर ऐसे रहते हैं मिरर हाउस बने होते हैं, कहाँ पर ऐसे ऐसे कांच लगे होते हैं, कोई मोटा दिखाई दे रहा है, कोई पतला दिखाई दे रहा है, कोई ठिगना दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, कोई इतना सा दिखाई दे रहा है, वो ऐसे मिरर होते हैं। तो बाबा भी कहते ये कई प्रकार के मिरर हैं। थोड़ा सा ज्ञान सुनाया तो अहंकार आ गया, अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। थोड़ा सा योग किया तो इतना बड़ा अनुभव करेंगे, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत किया, बहुत बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं। और कई ऐसे हैं जो सोचते हम कुछ नहीं कर सकते, हम देर से आए हैं, पुरुषार्थ कैसे करेंगे, वो बिल्कुल छोटे 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 हो जाते हैं। और कई ऐसे हैं उनकी आशाएं बहुत होती हैं और बहुत आशाएं, ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, वो लंबा लंबा आता है शीशे में, लंबा लंबा व्यक्ति दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार की बातों को अपने पास नहीं रखना। बाबा ने चुना, बाबा ने अपना बनाया, बाबा हमारा साथी है, बाबा हाथ पकड़ करके चला रहा है, हम बाबा की बच्ची हैं
और बाबा हमारा है, सब कुछ है और बाबा के साथ सर्व संबंध है। तो इसलिए माताओं को पहला क्या पक्का करना अपना चेकिंग में, बाबा मेरे दिल में। पक्का है ना कि नहीं? कौन बोलेगा बाबा मेरे दिल में? है दिल में? फिर ये तो नहीं कहोगे बाबा मेरा ये काम कर दो, फिर बहन जी को कहो बहन जी मेरे पति के लिए योग लगाओ, बहन जी मेरे घर का काम नहीं होता है, बच्चे नहीं मानते हैं उनके लिए योग लगा। वो क्यों लगाए बहन जी आपके लिए योग? आप नहीं लगा सकते क्या? पति तुम्हारा योग लगाए बहन जी है, पति तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे योग लगाए बहन जी, आएंगे हमारे पास हमारे बच्चों के लिए आप ये बताओ। अरे तो हम क्यों बताएं? तुम बताओ ना, तुम उनके लिए योग करो, उनके लिए शुभ वाइब्रेशन रखो, तो वो करना होगा ना। और भाइयों को क्या करना है? जब भी चलते हैं तो बाबा मेरी बैकबोन है, ठीक है ना? बाबा बैकबोन है। जैसे स्कूटर के कांच में देखते हैं ना पीछे कौन आ रहा है, गाड़ी के कांच में देखते हैं पीछे कौन आ रहा है, गाड़ी आगे चलानी, इधर कौन आ रहा है, इधर कौन जा रहा है, तो बाबा मेरी बैकबोन है। ये हमको चेक करना है, हम बाबा की छत्र छाया में हैं, बाबा मेरी बैकबोन है। तो इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं, अपने चेकिंग के लिए पहले अपने आप को संकल्पों को क्लियर रखना। शीशे को देखते अगर धूल मिट्टी होगी ना तो चेहरा भी धूल मिट्टी वाला दिखाई देगा। रोज उसको कपड़े से साफ करते हैं, रोज उसको साफ होगा तब तो अच्छी तरह देख सकते हैं ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि कई बार हमारे अंदर कई प्रकार के संकल्प, इसका संकल्प, उसका संकल्प, इसकी बातें, उसकी बातें जो है ना, वो जब हमारे पास आ जाती हैं तो हमारे मन के अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, जिसको बाबा कहते हैं कि माया का एक बहुत बड़ा धोखा आ जाता है। और वो माया का धोखा ऐसा होता है उसको हम पहचान नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं इसकी जो है ना बहुत बहुत संभाल रखनी है। तो बाबा कहते हैं भाइयों को भी अपनी चेकिंग करनी है, मन में क्लियर रहो क्या होता है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये काम होगा या नहीं होगा। बाबा कहते जो होगा वो भी कल्याणकारी है, जो नहीं होगा वो भी कल्याणकारी है। तो बाबा इसके लिए बच्चों को हमेशा हल्का रहने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। और बाबा तो हमेशा बच्चों को सदा आगे बढ़ाते ही रहते हैं। बाबा कहते बच्चे भल भूल जाए लेकिन बाबा बच्चों को नहीं भूलते हैं। और आप इस महीने में आए हैं, मधुबन तपस्वी भूमि में आए हैं, और आप हमेशा आते हैं तो नीचे शांति वन में रहते हैं, और बाबा के घर आते हैं 5 दिन रहने का मौका मिलता है, तो 5 दिन में चारों धाम की यात्रा करने का मौका मिलता है। वैसे तो जब नीचे रहते हैं आते हैं जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं ना, वो परिक्रमा करके जाते हैं, तो यहाँ पर तो परिक्रमा नहीं, बाबा के कमरे में बैठने का, बाबा से बात करने का, शांति स्तंभ पर बैठने का, हिस्ट्री हॉल में बैठने का, और बाबा की झोपड़ी में जाने का, और ये मेडिटेशन हॉल में बैठने का। जो आप शांति स्तंभ देखते ना उस समय बाबा के टाइम पर वो ओपन ग्राउंड था। तो बाबा हमेशा कहते थे ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ऐसा नहीं है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत इंजॉय करने का, बहुत लाइट है, बहुत हल्केपन का। बाबा कहते थे कि मर्यादाओं का पालन करना है, कुछ भी हो जाए, बाबा मम्मा दीदी दादियाँ कहते थे मर्यादाओं का पालन जरूर करो, बाकी हंसो बैठो खाओ पियो खेलो कूदो सब तरफ घूमो, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। तो बाबा भी बच्चों के साथ खेलते थे, और बाबा कभी बैडमिंटन खेलते थे, कभी कभी बाबा बच्चों से लुक्का छिपी भी करते थे, बाबा छिप जाते थे और बच्चे ढूंढते थे बाबा कहाँ है बाबा कहाँ है, तो फिर बाबा कहते तुम बच्चे लुक्का छिपी करते हो ना, क्या लुक्का छिपी करते, बाबा को भूल जाते। अरे बाबा को भूल जाता मैं, बाबा को भूल जाता हूँ, तो बाबा कहते जब तुम छिपा लुक्का छिपी कर सकते तो बाबा भी करेंगे। तो बाबा बच्चों से खेल करते थे, कभी बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे, वहाँ पर उसी स्थान पर बाबा बैडमिंटन खेलते थे। और बाबा की पर्सनैलिटी तो बहुत बड़ी थी और बाबा हमेशा जीत जाते थे। फिर बच्चों को थोड़ा लगता था बाबा तो जीत जाते हैं, बाबा के पास डबल पावर है। तो एक बार बाबा ने क्या किया, बाबा खुद चुपचाप ऐसे खेले जैसे बाबा हार गए। तो बच्चे बड़े खुश, आज तो हम जीत गए बाबा हार गए। सब कहने बाबा आज तो आप हार गए ना। बाबा ने कहा हार गए या तुम बच्चे बाबा के गले का हार बन गए हो। तो बाबा ऐसे कहते थे, बाबा किसी बच्चे को ना किसी भी स्थान पे बोलो आज से तुम बच्चे जो है ना बाबा के गले का हार बन गए। फिर बाबा बच्चों को बहुत रमणीक ढंग से ज्ञान भी सुनाते थे और पालना भी करते थे। कभी कभी बाबा टोली बांटते थे ना, तो एक बार बाबा ने कहा आज बाबा ने टोली दी है बच्चों को, सबने प्यार से खाई। सब कहते हाँ बाबा हमने खा ली। तो बाबा ने कहा अच्छा बाबा एक प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न? बाबा ने कहा अच्छा जिसने ना बाबा को याद किए बिना टोली खाई है वो हाथ खड़ा करे, बाबा उनको डबल टोली देंगे। तो बहुत से खुश हो गए कि बिना याद किए टोली खाई है। तो बाबा ने दो चार ने हाथ खड़ा किया। बाबा ने कहा इधर आओ है ना, खड़े हो जाओ, बोलो क्या भूल किया। बाबा बिना याद खाया किया है ना। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, अभी सबके सामने बोलो याद किए बिना टोली नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं खाऊंगा, कान पकड़ो। तो कहा अच्छा ठीक। तो बाबा ऐसे कराते थे। फिर एक बार कि फिर हमारी दीदी मनमोहिनी है ना, वो भी बहुत रमणीक थी। तो उसने एक बार बोला कि जिसने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है वो हाथ खड़ा करो। दो चार ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर दूसरी बार पूछा कि जिसने बाबा को याद किए बिना टोली खाई है आओ टोली मिलेगी। ढेर सारों ने हाथ खड़ा कर दिया टोली मिलेगी। तो जैसे आए ना दीदी कहती खड़े हो जाओ, उठक बैठक करो, उठक बैठक करो, जब तक मैं नहीं कहूँ ना तब तक उठक बैठक करते रहना। तो बहुत हंसते थे हम लोग, बहुत रमणीक करते थे। तो दीदी भी बहुत प्यार से सबको, इतना रमणीक बाबा करते थे, बाबा हंसाते थे, बाबा बच्चों को बहलाते थे, बाबा सबके साथ खेल कूद भी करते थे। और बाबा कहते थे सदा खुश रहना। ये ब्राह्मण जीवन सारे कल्प के अंदर एक ही बार मिलता है, इसलिए कभी भी दुखी नहीं होना है। सारे कल्प में बाबा मिला है। बाबा मुरली के अंदर कहते ना, कई बार बच्चे कहते बाबा जल्दी शरीर छूटे, बाबा कहते क्या तुम चाहते हो। कई बार कहते ना बाबा विनाश जल्दी हो, तो बाबा कहते तुम क्या चाहते हो मैं चला जाऊं, बोलो अभी। कहेंगे ना विनाश हो तो क्या कहेंगे, अरे नहीं होता है तो और अच्छा है, शरीर नहीं छूटता तो कम से कम कैसा भी है, कम से कम ब्राह्मण जीवन तो है, नए जन्म में जाएंगे छोटा होगा कैसे करेंगे। तो बाबा ऐसे बच्चों को पक्का करते थे। बाबा कहते थे कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचना। अभी मैं आपको बताती हूँ, एक बार कई लोग कॉपी कर लेते ना टीचर बहने, तो एक बार क्या हुआ, पहली पहली राखी बाबा को भेजी। तो उस समय बाबा ने, उस जमाने की बात है, एक आना भेजा, एक आना तो बहुत होता था। तो बाबा ने कहा इस एक आने के, वो ममरा होता है ना फुलिया जिसको पता नहीं क्या बोलते यूपी में है ना, क्या बोलते हैं, ममरा नहीं होता जो बेलपुरी का है ना, तो हाँ बाबा ने कहा वो लेकर के और सबको इसकी टोली बना के मीठी सबको खिलाना। फिर दूसरे साल जब आया तो सभी को मालूम पड़ा था कि बाबा ने तो उसको तो खर्ची भेजे थे। तो दूसरे साल बहुत सारे सेंटर्स ने बाबा को राखी भेज दिया। बाबा ने कहा ये क्या कर रहे हो, क्यों राखी भेजा, राखी तो पवित्रता का बंधन के लिए, मेरे पास क्यों भेजा। तो बाबा किसी को नहीं रुकने देते थे। बाबा कहते किसी को कॉपी नहीं करो, यहाँ कॉपी करते ना, अच्छा ये भी चार्ट लिख रहा है मैं भी ऐसा लिखूं, ये ऐसा पुरुषार्थ, वो घटिया पुरुषार्थ कर रहा मैं भी घटिया करूं, वो ऊपर से बढ़िया दिखाई दे रहा, तो किसी को कॉपी नहीं करो। बाबा हमेशा कहते थे बाबा के साथ का अनुभव करो, खुशी में रहो, कभी किसी को कॉपी नहीं करो। बाबा को अच्छा नहीं लगता था। बाबा कहते कॉपी करना मीन्स नकल किया, उसके अंदर जितनी कमजोरी है तुम्हारे अंदर आ जाए। तभी बाबा हमेशा कहते हैं आप समान नहीं, बाप समान बनो। बाप तो परफेक्ट है ना, आप में तो कुछ कुछ कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, तो बाबा हमेशा कहते हैं बाप समान बनना है। तो अच्छा, अभी आप सभी का बहुत बहुत बाबा के घर में स्वागत है। स्वागत के साथ साथ आप सबको बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी। जब साकार में बाबा थे ना, तो बाबा सब बच्चों को सौगात देते थे। बाबा कहते थे सौगात देंगे तो बच्चों को मधुबन याद आएगा। और ये जो सौगात मिलेगी बेडशीट, आपके पास बहुत सुंदर सुंदर बेडशीट होंगी, लेकिन ये भट्टी की सौगात है, ये किसी को नहीं देना। वहाँ भट्टी करते हो, कभी कहाँ जाते हो, मधुबन आते हो, रास्ते में ट्रेन में चाहिए, कहाँ चाहिए, कोई प्रोग्राम में जाते हो, तो वो उस समय आप यूज़ करो, ये नहीं देना। दूसरी भल किसको बांट दो। अच्छा, ये टोली है कलाकंद, बाबा को बहुत पसंद था। बाबा बच्चों को कहते थे कलाकंद सफ़ेद प्योर और ताकत वाला दूध की टोली है। बाबा सबको कलाकंद खिलाते थे। हमारी दादी प्रकाशमणि सबको दिल खुश खिलाते थे, कहती दिल खुश रखना है, कभी भी दिल को दुखी नहीं करना है ना। तो अच्छा, बाबा खिलाते थे। बाबा कहते थे बच्चे मुंह खोलो, देखो किसके पास आएगा, मुंह खोलो, खोलो खोलो खोलो। अब मैं ही खा लेती हूँ, तुम लोग तो मुँह ही नहीं खोल रहे, मैं क्या करूँ, मुँह खोलते तो मैं आपके पास भेजती। अच्छा ठीक है।